नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। इसराइल और अमेरिका या कहें तो नेतन्याहू और ट्रंप की रणनीति ईरान पर हमला कर सिर्फ उसे सबक सिखाना नहीं बल्कि वहां की मौजूदा सत्ता का खात्मा करना भी है। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए नेतन्याहू ने जिस तरह से जाल बुना है उसकी समीक्षा या कहें तो पड़ताल भी जरूरी है। इसलिए कॉलम अपन तो कहेंगे में इस बार मेरे विचार का शीर्षक है, नेतन्याहू ने दुनिया बदली। ओह, 21वीं सदी। इस सदी के प्रारंभ की एक तारीख 9/11 की थी, ताजा तारीख 228 है, और 26 वर्षों की इस पूरी अवधि के प्रतीक कौन है? तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, और तीसरे प्रतीक इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं। 9/11 के समय नेतन्याहू प्रधानमंत्री नहीं थे, वे 1996 में प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ओस्लो समझौते को हाशिए में रखकर फिलिस्तीनियों के प्रति नया रवैया अपनाया था। उनकी वापसी 9/11 की घटना के वैश्विक प्रभावों का एक परिणाम थी। हाँ, नेतन्याहू सर्वाधिक लंबे समय से प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड लिए हुए हैं। वे पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इसराइल के संस्थापक प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन, जिन्होंने 14 मई 1948 को इसराइल की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, उनके कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेतन्याहू का अब तक का कार्यकाल 18 वर्षों का है। तय माने ईरान पर इसराइल अमेरिकी हमले और 24 घंटे के भीतर ईरानी सुप्रीमो आयतुल्ला अली खामनेई की मौत से इसी साल होने वाले चुनाव में भी नेतन्याहू की जीत पक्की है। नेतन्याहू पहले दिन से फिलिस्तीनियों अरब इस्लामी राजनीति को हैसियत बताने के मकसद में काम करते रहे हैं और इसमें वे अपनी सफलता की गाथा 28 फरवरी 2026 की तारीख पर बुनेंगे, जिस पर इजरायली मतदाताओं का अनिवार्यता ठप्पा लगेगा। मैं नेतन्याहू को पहले रख रहा हूं और डोनाल्ड ट्रंप को बाद में, क्योंकि जो हुआ है उसके उत्प्रेरक केवल और केवल नेतन्याहू हैं। कहने वाले तो कहेंगे कि ट्रंप मवाली हैं और उनकी वजह से वेनेजुएला के बाद ईरान ऑपरेशन हुआ, पर असल खेला नेतन्याहू का रचा हुआ है। उन्होंने पश्चिम एशिया की शक्ल बदली है तो दुनिया के कोई 2 अरब मुसलमानों के दिल दिमाग को भी झंझोड़ा है। निश्चित ही चिंगारी हमास के यानी 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले से थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ है वह केवल नेतन्याहू की बदौलत है। उन्होंने किसी की कोई चिंता नहीं की और दुनिया के आगे गाजा का वह लाइव नजारा बनाया जिसे देखकर हर कोई दहला और दुनिया भर के मुसलमान पर सर्वाधिक असर। यही इस सदी के 26 वर्षों की हकीकत है, मानव सभ्यताओं में संघर्ष बिना घोषणा के होता हुआ। सोचे आतंकवाद के खिलाफ तत्कालीन राष्ट्रपति बुश के वैश्विक जंग के ऐलान और अफगानिस्तान इराक पर हमलों के बाद क्या माना गया, खत्म हुए इस्लामी आतंकी और दुनिया सामान्य। लेकिन इसराइल में नेतन्याहू, यूरोप में आतंकियों, इराक सीरिया में इस्लामी स्टेट और फिर अचानक ट्रंप का उभार क्या था? यूं कहने को नेतन्याहू ट्रंप ने अब्राहम समझौते का झुंझुना बनाकर यहूदी, इजराइल और इस्लामी देशों में कूटनीतिक रिश्तों की झांकी बनाई, लेकिन अंत अनुभव क्या है, कुल परिणाम क्या है? कह सकते हैं समय के साथ भूल जाने वाली घटनाओं का सिलसिला है, यह सही नहीं है, क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं। वह 20वीं सदी अलग थी जिसमें महायुद्ध हुए, विश्व व्यवस्था बदली, मगर वह सब वैश्विक जनमानस की आंखों के आगे प्रत्यक्ष नहीं था। अमेरिका ऐसा है, यहूदी ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, हिंदू ऐसे हैं, ईसाई ऐसे हैं, ये बातें 20वीं सदी में जानकार लोग ही सुनते थे। सब सुनी सुनाई बातें होती थी। पश्चिम एशिया में कभी क्रुसेड हुआ, मुस्लिम हमलावर निर्मम है या यूरोपीय देश लुटेरे हैं, औपनिवेशिक ताकतें और पूंजीपति शोषक हैं, ये तमाम बातें आम जनमानस से दूर थीं, जबकि 21वीं सदी में दुनिया एक गांव है, सब कुछ लाइव है। आज पृथ्वी के 8 अरब लोगों के आगे सब लाइव घटता हुआ है। सो दुनिया के आगे नेतन्याहू के भी पल पल दर्शन है, तो अली खामनेई, लादेन, बगदादी, ट्रंप, मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग आदि भी कैमरे के जरिए आंखों के आगे साक्षात हैं। इसीलिए नेतन्याहू ने 2023 से अब तक जो किया है वह वैश्विक स्मृतियों में मुस्लिम आबादी में आंखों देखी दर्ज है। नेतन्याहू और ट्रंप को गलतफहमी है कि अली खामनेई और ईरान को शैतान करार देकर मारा है तो मुसलमान उनका जयकारा करेगा। मेरा मानना है कि ट्रंप प्रशासन का यह सोचना ही बेवकूफी भरा है कि ईरान के लोग उसके लोकतंत्र बनवाने के मिशन की वाह करेंगे। इसलिए हर खाड़ी देश ने ट्रंप प्रशासन को समझाना चाहा कि ईरान पर हमला ना करे। इसके पीछे कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन को जहां अपनी सुरक्षा की चिंता थी, वहीं मुस्लिम जनमानस की भी चिंता थी। पृथ्वी के 2 अरब लोगों ने पिछले 3 वर्षों में गाजा को जैसा लाइव देखा है, वे भला कैसे ईरान पर हमले को ईरानी लोगों की भलाई का काम मानेंगे। बहरहाल नेतन्याहू ने जो चाहा वह कर दिखाया। ट्रंप के कंधे से ईरान पर वार का मुकाम ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक मायने इस्लाम, इस्लामी राजनीति, इस्लामी धर्मसत्ता के सभी पहलुओं में गंभीर है। मुझे नहीं लगता कि ईरान के 9 करोड़ शिया मुसलमान अपने धर्म की धर्मसत्ता छोड़ धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र को अपनाएंगे। ईरान वेनेजुएला नहीं है, न ही मिश्र, तुर्की या इंडोनेशिया है। वजह ईरान का दुनिया के कोई 20-25 करोड़ शियाओं का धर्म तीर्थ होना भी है। दुनिया भर से लाखों की संख्या में शिया हर साल ईरान के तीर्थ करबला, नजफ, मशहद, कुम पहुंचते हैं और यही विलायते फकीह यानी आयतुल्लाह मरजाह की विरासती धर्म शिक्षा के केंद्र हैं। इसलिए इजराइल अमेरिका एक आयतुल्लाह को मारेंगे तो धर्म व्यवस्था संविधान अनुसार नया आयतुल्लाह आ जाएगा। माना जाता है कि ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स धर्म विधान मामले में कट्टर है और इसमें 1.5 से 2 लाख सक्रिय सैनिक, 90,000 बसीज मिलिशिया है। ईरानी सेना के 9 लाख सैनिकों से अतिरिक्त ये ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड है। ये ट्रंप नेतन्याहू के आगे समर्पण कर दें या 47 साल पहले के शाह पल्लवी के बेटे को तेहरान में सरकार बनाने दें, यह संभव नहीं है। सो ईरान अरब खाड़ी क्षेत्र का आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ही नहीं है, उसकी सेना भी सर्वाधिक बड़ी और संस्थागत ढांचा लिए हुए है। इस वास्तविकता को नेतन्याहू भली भांति जानते हैं, तभी नेतन्याहू ने ट्रंप के जरिए अपना मकसद साधा। सो अमेरिका फंसा है और फंसा रहेगा, फिर ट्रंप को निजलाभ भी है। ईरान पर हमले, खामनेई की मौत से वे अंदरूनी राजनीति में नैरेटिव बनाएंगे, वहीं वैश्विक दादागिरी भी बढ़ेगी। इस सब का भारत पर क्या असर होगा? ध्यान रहे, ईरान पर हमले से ठीक पहले नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता देकर उनका इजरायली संसद में भाषण करवाया, अपने मिशन में राजदार बनाया। याद करें कि किस अंदाज में दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंक के समूल नाश में साझेदारी दिखाई, मोदी ने कैसे इजराइल व भारत को फादरलैंड मदरलैंड के रूपक में बांधा। सवाल है कि नेतन्याहू के जरिए जोश अहंकार का वैश्विक गुब्बारा बने डोनाल्ड ट्रंप नई स्थिति में क्या भारत पर रहम करेंगे, व्यापार संधि में भारत से बराबरी का व्यवहार करेंगे या और दबाव डालेंगे। कल तक भारत की ऊर्जा यानी कच्चे तेल का ईरान भरोसेमंद सप्लायर था, उस सोर्स को अब बंद मानना चाहिए क्योंकि वहां ट्रंप की वेनेजुएला जैसी कठपुतली सरकार कतई नहीं बनेगी। लड़ाई होती रहेगी, अंदरूनी अराजकता में ईरानी तेल ठिकाने बर्बाद भी हो सकते हैं। सो जब ईरान से सप्लाई बाधित होगी तो चीन की खरीद रूस से होगी, वहीं भारत ट्रंप के दबाव में रूस से सप्लाई नहीं बढ़वा सकता। ऐसे में तेल अमेरिका से खरीदो या उसके जरिए वेनेजुएला से भारत तेल मंगाएगा और कीमत का निर्णय करता अमेरिका। ऐसा सिनेरियो न तो असंभव है और न इसका समाधान आसान है। ले देकर मोदी सरकार नेतन्याहू से ही रास्ता निकलवा सकती है, वो अभी तब संभव है जब यह मालूम हो कि ईरान की धर्मसत्ता और उसके 12-13 लाख अनुयायी सैनिक अड़िग रहते हैं या नेतन्याहू ट्रंप के आगे सरेंडर करते हैं। मेरा मानना है कि इन लाखों सैनिकों का सरेंडर तभी संभव है जब अमेरिका, इजराइल दोनों तेहरान में अपने सैनिक उतारे, और यह नामुमकिन है। इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, अगले एपिसोड का करें इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।